दिनभर तारीख 6 सितंबर दिन मंगलवार। मैं हूं विनीत खरे। कश्मीर पर राजनाथ सिंह की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। उधर भारत प्रशासित कश्मीर में हिंसा जारी, 2 और की मौत।
कोई भी ऐसा कदम ठोस नहीं उठाया गया केंद्रीय सरकार की तरफ से कि जो गुस्सा है लोगों के दिलों में उसको एड्रेस कर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं। यूपी में राहुल गांधी के खाट पर चर्चा कार्यक्रम में लोग खाट ले भागे। चीन ने कहा हांगकांग की स्वतंत्रता की तरफदारी करने पर हो सकती है सजा।
बहुत आवश्यक है चीन को, खासकर बीजिंग में सत्ता को ये दिखाना, ये जो अलगाववादी तत्व हैं वो सिर्फ एक मुट्ठी भर है।
साथ में खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 20 पार्टियों के 26 सांसदों का एक दल शांति वार्ता के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर था, जिसका कल समापन हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये कहना गलत होगा कि दौरा विफल रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने कराची में कार्यक्रम में कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के भीतर समस्याएं हैं। बंबावाले ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हालांकि उन्होंने आशा जताई कि पीएम मोदी नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। चीन का कहना है कि हांगकांग की आज़ादी की बात करने वाले हर व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। चीन की ओर से ये चेतावनी तब आई है जब हांगकांग के विधान परिषद के लिए रविवार को हुए चुनावों में आज़ादी समर्थक कई उम्मीदवारों ने अच्छी खासी सीटें जीत ली हैं, जिसके बाद अब वे संवैधानिक बदलावों को वीटो कर सकते हैं। चीन के हांगकांग और मकाऊ मामलों के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग विधानसभा के अंदर और बाहर उन सभी तरह की गतिविधियों के खिलाफ है जो हांगकांग की आज़ादी की वकालत करते हैं। म्यांमार के रखाइन राज्य के दौरे पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान की सैकड़ों बौद्ध कार्यकर्ताओं ने हंसी उड़ाई है। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू ची के आग्रह पर कोफी अन्नान उस कमीशन की अगुवाई कर रहे हैं जो देश के पश्चिमी हिस्से में जारी जाति हिंसा की जांच के लिए बनी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये देश का अंदरूनी मामला है और विदेशियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुसंख्यक बौद्धों के हमलों में मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय के दसियों हजार लोग विस्थापित हो चुके हैं, इनमें से कई देश भी छोड़ चुके हैं। वहाँ जारी हिंसा के कारण आंग सान सू ची के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हुए हैं। रखाइन राज्य के कार्यालय में कोफी अन्नान ने जोर देकर कहा कि उनका काम सिर्फ सलाह देना है।
To build the future, the two major communities have to move beyond decades of mistrust.
भविष्य के निर्माण के लिए दोनों बड़े समुदायों को दशकों के अविश्वास को तोड़ना होगा और न्याय, निष्पक्षता और समानता के साझा मूल्यों को आत्मसात करने के उपाय ढूंढना होगा। आखिरकार रखाइन राज्य के लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते बनाने होंगे। मदद के लिए हम यहाँ विचार और सुझाव देने आए हैं। ये थे कोफी अन्नान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के एक बड़े इस्लामिक प्रचारक एनजेम चौधरी को तथाकथित इस्लामिक स्टेट के लिए समर्थन जुटाने पर 5.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जज ने कहा कि चौधरी एक खतरनाक और चौकस व्यक्ति हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद से जारी हिंसा और प्रदर्शनों को रोकने के लिए भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की कश्मीर यात्रा के बाद आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्हें घाटी की ज़मीनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये बैठक 1 घंटे चली। मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी राजनाथ सिंह से मिला। सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया है कि कल बुधवार को सर्वदलीय बैठक के सदस्य दिल्ली में मिल सकते हैं, जहां आगे के कदमों पर बात की जाएगी। उधर कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पों में 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 75 पहुंच गई है। कई इलाकों से प्रदर्शनों की खबरें हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
रविवार को जब भारतीय संसद का प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर पहुंचा तो जगह जगह प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध फोर्सेस की कार्रवाइयों में 400 लोग घायल हो गए, जिनमें से कल एक की मौत हो गई। आज भी दक्षिणी कश्मीर के सीर हमदान इलाके में पैलेट फायरिंग से एक 17 वर्षीय युवा मारा गया और एक महिला की हालत गंभीर है। 2 महीने से अलगाववादी आंदोलन और लगातार कर्फ्यू के कारण घाटी में आम जनजीवन ठप हो जाने के कारण कई लोग स्वयंसेवक बन गए हैं। ऐसे ही सैकड़ों युवा आजकल सक्रिय हैं, जो अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां बांटते हैं और एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आंदोलन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और कई बार पथराव करने वालों ने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। फोर्सेस की मारपीट या पथराव से बचने के लिए तो अब एम्बुलेंस ड्राइवर हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हैं। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में सक्रिय कई NGOs के स्वयंसेवकों ने आज सुरक्षा बलों और पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया।
एक पलट वाला था, उसने डायरेक्ट पलट फायर कर लिया है हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर को। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस जमहूरियत और किस इंसानियत का दर्श पढ़ाते हैं। हम सिर्फ खिदमत खल्क के लिए यहाँ पर हैं, क्यों हमें ऐसा करने से रोक रहे हैं ये?
पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अलगाववादियों की कॉल पर लोग सड़कों पर बाधाएं खड़े करते हैं और बाद में हिंसक प्रदर्शन करते हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अब तक 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। लेकिन मानव अधिकार संगठनों का दावा है कि लोग अपनी बस्तियों में रैली का आयोजन करके ज्यादतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीकों से गुस्सा प्रकट करना चाहते हैं। मानव अधिकारों के लिए सक्रिय कई NGOs के संगठन कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के प्रवक्ता खुरम परवेज कहते हैं,
कुछ रैली ऐसी भी हैं इसमें कि जहाँ पे लोगों ने खाने का बंदोबस्त किया है, जहाँ पे लोगों ने शामियाने लगाए हैं। अगर लोग शामियाने लगा रहे हैं, स्टेज सजा रहे हैं और खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टोन पेल्टिंग के लिए तो इतने सारे बंदोबस्त नहीं होंगे।
खुरम ने आज ही एक वक्तव्य में बताया कि 29 अगस्त से 5 सितंबर तक कश्मीर के कई इलाकों में 80 रैलीज का आयोजन किया गया, जिनमें से 44 रैलीज शांतिपूर्ण तरीके से हुई, जबकि 36 रैलियों पर पुलिस ने ही हमला किया। गौरतलब है 8 जुलाई को दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में पुलिस के एक ऑपरेशन में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी को 2 साथियों समेत मार गिराया गया तो घाटी में प्रदर्शनों की लहर फैल गई। अलगाववादी आंदोलन जारी रखने के लिए हर सप्ताह प्रदर्शनों और बंद का कैलेंडर जारी करते हैं। प्रशासन का कहना है कि कई क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन अभी तक घाटी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का कश्मीर आना, चले जाना, उसके बावजूद कश्मीर में हिंसा का जारी रहना, ताज़ा स्थिति का क्या हल है? यही पूछा मैंने श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन से।
एक इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, एक डेलीगेशन जो लेके आए, एक तो पहले ही लेट था बहुत। कोई भी ऐसा कदम ठोस नहीं उठाया गया केंद्रीय सरकार की तरफ से कि जो बेसिक प्रॉब्लम है इस वक्त, जो गुस्सा है लोगों के दिलों में कश्मीर में, उसको एड्रेस करने।
जब आप कहती है कदम नहीं उठाया गया, किस कदम की उम्मीद या अपेक्षा थी?
जो प्रधानमंत्री जी का बयान भी 1 महीने के से ज्यादा के बाद आता है, काफी उन्होंने 2-3 हफ्ते लगाए और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हम वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की उन्होंने। तो ये रीजन जो आज जो सूरत हाल है कश्मीर में, वो उसके रीजन को इकोनॉमिक तो है नहीं, वो तो सियासी मसला है। कि 1 महीने के बाद जब उन्होंने बोला हाँ नहीं हम बातचीत करेंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये जब आप इस किस्म के जुमले बोलते हैं जो सालों से बोलते आ रहे हैं और जिसकी वजह से कभी हल नहीं निकला है कश्मीर का, इसका मतलब उससे आगे जाने की जरूरत थी, तो वो नहीं गए। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज ने जोर वगैरह डाल के तो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार हुआ। आज 2 महीने हो गए उस बात को। 2 महीने के बाद जब वो आते हैं, उसके बाद ऐसे आप इन्विटेशन जो है डेलीगेशन को आप दे रहे हैं, उसमें आपने हुर्रियत को शामिल नहीं किया। हुर्रियत एक पॉलिटिकल फेस है।
नहीं, लेकिन जो हमने पढ़ा कि भाई इनविटेशन गया या बातचीत करने की इच्छा जताई गई, लेकिन हुर्रियत की तरफ से मना कर दिया गया।
देखिए, इच्छा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक तो नहीं आई कभी भी। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, जो मिलना चाहता है वो मुझसे मिल ले। तो आप कोई ऐसे आपको खैरात लेके तो नहीं जा रहे ना, आप ऐसे ट्वीट करके तो कोई ओपन इन्विटेशन, कोई सोशल फंक्शन तो नहीं हो रहा था वहाँ पे।
लेकिन अनुराधा, जब सवाल ये कि लोगों की मौत लगातार जारी है, 2 जो पोजीशंस हैं उससे आगे बढ़ने को जैसा लग रहा है कोई तैयार नहीं, फिर हल कैसे निकलेगा? ये जो डेडलॉक है,
देखिए उसमें
आम लोग सफर कर रहे हैं,
ऑल हर तरफ से लोगों को पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अगर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज उनको रोकते हैं, वो आगे से पत्थर चलाते हैं, फिर वो और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, फिर गोलियां चलती हैं, पैलेट गन्स चलती हैं। और इस साइकिल को ब्रेक करने का उसमें डिप्लोमेटिक मूव्स की जरूरत है, एक तो एंगेजमेंट की जरूरत है, दूसरा जरूरत है आप मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लीजिए जो कि प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकते हिंदुस्तान को। सबसे पहले पैलेट गन्स बंद करिए जिससे कोई 200 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसमें से 50 बच्चे हैं। डीमिलिटराइजेशन जो सिविलियन एरियाज से है, कम से कम आप सिंबॉलिक कुछ एरियाज में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस उसको अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और जो किलिंग्स हुई हैं उसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस किस्म के ठोस कदम जब तक नहीं उठाएंगे, वो जो गुस्सा है आज का, वो उसमें नमी नहीं आने वाली।
श्रीनगर से ये थी अनुराधा भसीन।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना मात्र से अधिकारी किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का केस नहीं दर्ज कर सकते, और केस दर्ज करते वक्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति के किसी कदम से हिंसा भड़कने की संभावना थी या नहीं। जैसा कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट के केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के आदेश में कहा गया था, किन मामलों में प्रशासन किसी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर सकता है। सलमान रावी ने यही पूछा वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण से।
तो हर स्टेट का जो डीजीपी है, जब तक डीजीपी या होम सेक्रेटरी ये देख कर सर्टिफाई ना करे कि भाई, लिख कर ना दे कि भाई हमने ये केस देख लिया है और इसमें बिल्कुल हिंसा भड़का के सरकार पलटने की या सरकार गिराने की बात ये लोग कर रहे हैं हिंसा के जरिए, तब तक इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा।
तो जैसे विनायक सेन के मामले में तो यही आरोप लगाया था कि हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे और जो लेफ्ट विंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रमोट कर रहे।
आरोप लगाया था उसमें, ये आरोप लगाया था कि वो माओइस्ट पार्टी के मेंबर हैं
जी,
और माओइस्ट पार्टी जो है वो हिंसा भड़का के वो ये करती है
जी,
ये कह रहे थे
जी।
तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना ये बाय इटसेल्फ गुनाह नहीं है, जबकि आप अनलेस कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की गुनाहात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो। अभी तो वो कुडन कुलम के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, उनके खिलाफ सेडिशन चला दिया। वहाँ असीम श्रीवास्तव ने एक कार्टून बनाया, पार्लियामेंट को एक टॉयलेट बोल की तरह दिखा दिया, उसमें आपने सेडिशन रजिस्टर कर लिया। कहीं पर अरुंधति राय ने कुछ कश्मीर पर बोला, उसमें आपने सेडिशन का केस रजिस्टर कर लिया। जहाँ पर कोई हिंसा की दूर दूर तक बात ही नहीं है, तो इसका मिसयूज रोकने का तरीका यह है कि आप ये आदेश दीजिए कि डीजीपी पहले सर्टिफाई करेगा तभी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। जज भी जो है जब कॉग्निजेंस लेगा, जब उस केस से डील करेगा, तो उसको भी ये अपने ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कि हाँ, हम सेटिस्फाइड हैं कि इसमें केदारनाथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं और इसमें हिंसा भड़काने की बात है, तभी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ उसको मतलब ये बोल दिया कि नहीं नहीं, ये सब हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है ये कह देना कि जो भी अथॉरिटी सेडिशन का केस रजिस्टर करे केदारनाथ का जजमेंट फॉलो करे।
अब मान लीजिए कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है और फिर वहाँ पर हिंसा भी भड़क रही है, कहीं कहीं पर जो है पाकिस्तान के झंडे लेकर प्रोटेस्ट करते हैं लोग, तो ये
पाकिस्तान के झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकते हैं, उसमें कोई हिंसा भड़काने की बात नहीं है।
जो आजादी के
स्लोगन्स लगते हैं, अगर कोई जना ये कह रहा है कि भाई हम बंदूक के जरिए आजादी लेंगे, हम ये हिंदुस्तान की आर्मी को धाराशाही करके आजादी लेंगे, अगर कोई ये कह रहा है तब तो उसको सेडिशन में आप डाल सकते हैं। पर अगर कोई यही कह रहा है कि भाई कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए, तो वो तो कोई सेडिशन नहीं है, उसमें हिंसा की क्या बात है।
वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देवरिया जिले के रुद्रपुर से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की। किसान यात्रा के नाम से महीने भर का यह अभियान देवरिया से दिल्ली तक करीब 2,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसमें जगह जगह किसानों के साथ खाट पर चर्चा का भी कार्यक्रम रखा गया है। रुद्रपुर में राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीतियों की उन्होंने जमकर आलोचना की। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान किसानों से कर्ज माफी और बिजली बिल आधा करने का वायदा भी किया जा रहा है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी का खाट पर चर्चा का कार्यक्रम था। वो हुआ भी, लेकिन उसके बाद खाट पर चर्चा से ज्यादा खाट की चर्चा हुई। दरअसल चर्चा के बाद खाट पर बैठे किसानों ने उसे अपना समझकर घर ले जाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सैकड़ों खाटें या तो वहां से गायब हो गई या फिर टूट गई। बहरहाल राहुल गांधी ने खाट पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, मौजूदा केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और चुनाव बाद सरकार बनने पर मदद की गारंटी दी।
मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने किसानों की बहुत बात की, कहा कि हम किसानों की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान की सरकार किसानों की सरकार, किसानों की मदद करने की सरकार होगी। मगर दुख की बात यह है कि जब से उनकी सरकार आई, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसान को भूल गए हैं।
मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किसान यात्रा शुरू करने के बाद राहुल गांधी ने अपनी टीम के साथ किसानों के घर घर जाकर मांग पत्र भरवाए। यही नहीं, राहुल गांधी ने खुद भी मांग पत्र भरा और किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार बनने पर उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दरअसल इसीलिए इस यात्रा का नारा भी रखा गया है, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर रोज 2 जिलों में खाट पर चर्चा करेंगे। इसके लिए करीब 4,000 खाट तैयार कराई गई है। पहली खाट सभा रुद्रपुर में हुई, जिसमें मंच पर राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद बैठे थे और नीचे बिछी खाटों पर किसान नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं के साथ ही उनसे हमदर्दी दिखाते हुए महंगाई की चर्चा भी छेड़ी।
पार्लियामेंट में मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा था कि किसान को जो रेट मिलता है, मान लो दाल के लिए जो उसको रेट मिलता है, उसमें और मार्केट रेट में इतना फर्क क्यों है? किसान 40 रुपए में देता है और मार्केट में 200 रुपए की दाल होती है।
चर्चा के दौरान कई किसानों ने मंच से आकर अपनी समस्याएं साझा की। राहुल गांधी ने उनके साथ खड़े होने और संघर्ष करने का भरोसा दिया, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस की न तो केंद्र में और न ही राज्य में सरकार है, ऐसे में वो सिर्फ साथ ही दे सकते हैं, मदद नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
मुश्किल भरे इस साल में कावेरी नदी के पानी को तमिलनाडु में छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन के लिए उतरे। इस कारण व्यस्त बेंगलुरु मैसूरू राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया और लगभग 700 बसों को सड़क से हटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कर्नाटक अगले 10 दिनों तक लगातार तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक्स पानी देगा ताकि फसल को बचाया जा सके। इस बार कम बारिश पड़ने की वजह से कर्नाटक के पानी के जलाशयों और तालाबों में 50% से भी कम पानी है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
यह आवाज मंड्या जिले के किसानों की है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किए। सामान्य तौर से मंड्या के किसान जब भी हाईवे पर प्रदर्शन के लिए आते हैं, जब मामला कावेरी पानी का हो, और जब वे प्रदर्शन करते हैं तो जोरों से करते हैं। जैसे कि आज वे न सिर्फ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के फ्लेक्स पोर्ट पर भी चप्पल फेंका और आग लगा दी। उनका प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर था, जिसमें कर्नाटका को अगले 10 दिन हर रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को रिहा करना है। कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह पानी नहीं रिहा कर सकता है, क्योंकि अनियमित मानसून की वजह से रिजर्वॉयर में पानी बहुत ही कम है। कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटका पर इसका क्या असर होगा? हमने यह सवाल पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से पूछा। उन्होंने कहा,
The point is, I got the orders in my hand, but what they say is, if the Karnataka government does not release the water as per the direction of the Supreme Court,
अगर कर्नाटका इस आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटी जिम्मेदारी लेगी और पानी रिहा करेगी। दरअसल मामला ये है, कर्नाटका अपना पानी तमिलनाडु को देने के बाद या तो अपने किसान को पानी दे सकती है या बेंगलुरु और मैसूरू शहरों के निवासियों को पीने का पानी दे सकती है। ये थे देवेगौड़ा के शब्द। कावेरी पानी के बंटवारे की समस्या करीब 125 साल पुरानी है। जब कभी दक्षिण पश्चिम मानसून में कमी आती है तो दोनों राज्यों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इस वक्त भी ऐसे ही हुआ। कर्नाटका ने कहा 10,000 क्यूसेक पानी रिहा करेगा। तमिलनाडु ने कोर्ट से कहा उसको 20,000 क्यूसेक पानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 15,000 क्यूसेक का, और इस आदेश के बाद मंड्या के किसान प्रदर्शन किए और बेंगलुरु मैसूर हाईवे बंद कर दिए। कर्नाटका के DGP ओम प्रकाश ने कहा,
प्रदर्शन तो हुआ है जहाँ जहाँ पर कई जगह हुआ है और लोग कहीं 25 है, कहीं 50 है, कहीं 100 है, तो ये लोग ज्यादातर जो है मैसूर बेंगलोर हाईवे को ही लोगों ने अपना टारगेट बनाया था।
प्रदर्शन अगले थोड़े दिन भी चलेंगे क्योंकि शुक्रवार को कर्नाटका बंद बुलवाया गया है। मतलब यही है कि इसका असर सिर्फ पर्यटन पर ही नहीं लेकिन आम लोगों के आने जाने पर भी पड़ेगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि हांगकांग की स्वतंत्रता की तरफदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल की 70 सीटों में से 35 सदस्य हांगकांग की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। चीन की सरकार हांगकांग के लिए किसी भी तरह की राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोध करती है। हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक इलाका है और यहाँ प्रशासन एक देश दो सिस्टम के आधार पर चलता है। मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीन मामलों की जानकार प्रोफेसर अलका आचार्य से पूछा कि चीन में हांगकांग को लेकर कितनी चिंता है।
दो मुद्दे हैं जिस पे कोई भी सरकार हिल जाएगी। चीन को छोड़िए, वो तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है जो कि काफ़ी मजबूती से ये कोशिश कर रहा है कि आम जनता की तरफ से कम जो इंडिपेंडेंस की जो बात होती है वो ज़रा भी ना उठे। लेकिन जो दो बातें हो रही हैं खासकर अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद से, कि धीरे धीरे जो युवा तबका है उसका रुझान जो है वो अब खुलकर या तो इंडिपेंडेंस की तरफ आ रहा है या कम से कम जो डेमोक्रेटिक एक प्रणाली है उसकी बातचीत अब ज़्यादा उठने लगी। और खासकर कि एक जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रणाली है जिसमें इलेक्शंस होते हैं, मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये युवा वर्ग का इस सारे बहस में अधिक से अधिक मात्रा में शामिल होना एक बहुत ही चिंताजनक मामला है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से सरकार ने अपना रवैया अपनाया है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि वो चीन के हाथ की एक कठपुतली है और कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो लोगों को खल रहा है। उन्हें लगता है कि जो हांगकांग में जो सरकार है वो सिर्फ चीन के इशारे पे चल रही है और जो हांगकांग के निवासी हैं उनकी तरफ उसका उतना ध्यान नहीं है।
इससे क्या चीज़ों में बदलाव होगा, क्योंकि हांगकांग में पिछले कुछ समय से एक जो शिकायत थी कि एक तो चीन से बहुत सारे ज़्यादा लोग हांगकांग में आके बस रहे हैं, दूसरी शिकायत ये थी कि जो मीडिया है, प्रेस है, उस पर चीन की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका असर, कंट्रोल बढ़ रहा है।
एक तो इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम तो अवश्य अपेक्षा कर सकते हैं कि थोड़ी कठोरता से इन सब बातों को लिया जाएगा, क्योंकि इस समय बहुत आवश्यक है चीन को खासकर बीजिंग में सत्ता को ये दिखाना कि ये जो अलगाववादी तत्व हैं वो सिर्फ एक मुट्ठी भर हैं और जो मेजॉरिटी जो जनता है वो उनके साथ है, तो ये उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे ग्रुप्स हैं या संगठन हैं जो कि न केवल आज़ादी की बात करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि हमें थोड़े से मिलिटेंट तरीके अपनाने होंगे, तो इन लोगों के ऊपर ज़रूर एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
ये थी प्रोफेसर अलका आचार्य। चीन में G20 शिखर सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा दक्षिण पूर्व एशिया के देश लाओस में एशियन सम्मेलन के लिए आए हैं। इसी सम्मेलन में उन्हें फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे से भी मिलना था, पर मीडिया को दिए एक बयान में जब रोड्रिगो डुटार्टे ने राष्ट्रपति ओबामा को वेश्यापुत्र कहा तो इसके बाद राष्ट्रपति ओबामा ने उनसे मिलने से मना कर दिया। पूरा ब्यौरा सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
बतौर राष्ट्रपति एशिया में अपने आखिरी दौरे पर आए राष्ट्रपति ओबामा ने फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटार्टे से मिलने से मना कर दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि लाओस में एशियन शिखर सम्मेलन में जाने से पहले मीडिया में एक बयान देते हुए रोड्रिगो ड्यूटार्टे ने राष्ट्रपति ओबामा को वैश्या पुत्र कहा।
I am a president of a sovereign state and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but
मैं एक आजाद देश का राष्ट्रपति हूं और बहुत वक्त से हम किसी देश की कॉलोनी नहीं हैं। फिलीपींस की जनता के अलावा मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए इज्जत से बात कीजिए, यूं ही सवाल और बयान मत बोलिए।
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटार्टे के शब्द। इसके बाद जहां एक ओर राष्ट्रपति ओबामा ने रोड्रिगो ड्यूटार्टे से तय मुलाकात के तहत मिलने से मना कर दिया, वहीं दूसरी ओर फिलीपींस राष्ट्रपति के प्रवक्ता मार्टिन एंडनार ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ड्यूटार्टे को ऐसा बयान देने का अफसोस है।
President Duterte explained that the press reports that the President Obama would lecture him on extrajudicial killings led.
राष्ट्रपति ड्यूटार्टे ने कहा है कि उनके ऐसे बयान की वजह मीडिया में आई वो रिपोर्ट थी जिनमें कहा गया था कि अमरीकी राष्ट्रपति मानव अधिकार के मुद्दों पर सख्ती से बात करना चाहते हैं। उन्हें अफसोस है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया और उनके बयान से ये विवाद हुआ है।
राष्ट्रपति रोड्रिगो के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि फिलीपींस अब भी अमरीका के साथ बातचीत और काम करने के तरीके तलाश रहा है।
The president looks forward to ironing out differences arising out of the national priorities.
हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण की वजह से पैदा हुए मतभेदों को हटाना चाहते हैं और आपसी बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम करने के तरीके ढूंढना चाहते हैं।
फिलीपींस राष्ट्रपति के प्रवक्ता मार्टिन एंडनार के शब्द। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटार्टे का विवादों से लंबा नाता रहा है। ड्यूटार्टे पिछले महीने ही संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की धमकी दे चुके हैं। राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटार्टे इससे पहले पोप फ्रांसिस, अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी और फिलीपींस में मौजूद अमरीकी राजदूत के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर इससे पहले भी विवादों में रहे हैं।
ये रिपोर्ट थी वैभव श्रीवास्तव की। और अब जानते हैं खेल की दुनिया में क्या हो रहा है। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो पहुंच गए हैं।
जी, अगर अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात की जाए तो भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने महिला युगल वर्ग के तीसरे दौर में अमरीका की निकोल गिब्स और जापान की नाओ हिबिने को 6-4, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। लेकिन मिश्रित युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार कनाडा की गैब्रियला दाब्रोवस्की क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए। उन्हें जर्मनी की एना लीना ग्रोनेफील्ड और कोलंबिया के रॉबर्ट फारा ने 1-6, 6-2, 10-8 से मात दी। इसके अलावा अमरीकी ओपन में बड़े उलटफेर भी हुए जब वाइल्ड कार्डधारी अर्जेंटीना के युआन मार्टिन डेल पोत्रो ने 8वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डेल पोत्रो ने पहला सेट 6-3 से जीता और दूसरे सेट में जब वो 3-2 से आगे थे तब डोमिनिक थीम मुकाबले से हट गए। वहीं महिला एकल वर्ग में गैर वरीयता हासिल एना कुजू ने 4थी वरीयता हासिल पोलैंड की अग्नेस्का रद्वांस्का को 6-4, 6-4 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। और अगर आज होने वाले मुकाबले की बात की जाए तो नजरें रहेंगी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार बारबोरा स्ट्राइकोवा पर, जो क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी कैरिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादोविच का सामना करेगी। उधर पल्लिकल में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर के बाद 1 विकेट खोकर 134 रन बना लिए थे।
शुक्रिया आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने कराची में कार्यक्रम में कहा है कि पीएम मोदी नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजधानी काबुल में कल हुए 2 आत्मघाती हमलों में मृतकों की संख्या कम से कम 41 हो गई है। तालिबान के इन हमलों में मारे गए ज्यादातर लोग आम नागरिक हैं। चीन का कहना है कि हांगकांग की आज़ादी की बात करने वाले हर व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। चीन की ओर से यह चेतावनी तब आई है जब हांगकांग के विधान परिषद में के लिए रविवार को हुए चुनावों में आज़ादी समर्थक कई उम्मीदवारों ने अच्छी खासी सीटें जीत ली हैं।
ये थे मुख्य समाचार। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी करीब डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। स्टूडियो संभाला था तिलक भाटिया ने।